हम दिन में मतलब कई बार खाते हैं, पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि ये खाना हम तक आया कैसे? और मेरा मतलब सिर्फ वो खेत से प्लेट वाले सफर से नहीं है, मैं उस पूरी अदृश्य व्यवस्था की बात कर रही हूँ। सूरज, पानी, मिट्टी और न जाने कितने लोगों की मेहनत।
बिल्कुल, हम भोजन को बस एक जरूरत समझ लेते हैं, कैलोरी का एक सोर्स, पर असल में हर निवाला वो एक बहुत बड़ी कहानी का, आप कह सकते हैं, आखिरी अध्याय है।
सही बात है।
एक ऐसा पॉइंट है जहां पूरी प्रकृति और पूरा समाज एक साथ आ जाते हैं।
आज हम एक ऐसी ही प्राचीन भारतीय परंपरा पर गहराई से बात करने वाले हैं, जो खाने के सामान्य से काम को एक बहुत गहरे आध्यात्मिक अभ्यास में बदल देती है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बलि वैश्व महायज्ञ की प्रक्रिया और उसके पीछे के दर्शन को समझाते हैं।
जी
तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि ये छोटा सा दैनिक अनुष्ठान आखिर है क्या, इसे महायज्ञ क्यों कहते हैं, और इसके जो 5 हिस्से हैं वो हमें हमारे जीवन के बारे में क्या सिखाते हैं। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है। हमारे स्रोत इसे आभार का, जिम्मेदारी का और जुड़ाव का एक रोज का अभ्यास बताते हैं। मतलब ये स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाने का एक तरीका है।
तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले तो ये शब्द ही है यज्ञ। ज्यादातर लोगों के लिए तो यज्ञ का मतलब एक बड़ा सा हवन कुंड, मंत्रोच्चार और
हाँ, बहुत सारे पंडित।
हाँ, लेकिन हमारे एक स्रोत में भगवद गीता का जिक्र है कि जो यज्ञ किए बिना मिली चीजों का उपभोग करते हैं वे एक तरह से चोर हैं। ये तो बहुत सख्त बात लगती है।
ये सख्त इसलिए लगती है क्योंकि हम यज्ञ शब्द को बहुत सीमित नजरिए से देखते हैं। गीता में यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है, उसका मतलब है एक समर्पण का भाव।
अच्छा, तो ये एक तरह का ब्रह्मांडीय लेन देन है। शायद इसीलिए हमारे स्रोतों में बलि वैश्यों को महायज्ञ भी कहा गया है, जबकि ये क्रिया बहुत छोटी है। ये बात थोड़ी उलझाती है, एक तरफ महा और दूसरी तरफ लघु यज्ञ, ये है क्या असल में?
यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। इसे महायज्ञ इसके दर्शन की वजह से कहा गया है। इसका उद्देश्य महान है, ये आपको पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है।
लेकिन इसे लघु यज्ञ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे करने का तरीका बहुत सरल है, ताकि हर कोई, हर व्यक्ति इसे अपने घर में रोज कर सके, किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं है।
और ये होता कब है, मतलब इसकी प्रक्रिया क्या है?
ये ठीक भोजन करने से पहले होता है। घर में जो भी खाना पका है उसे खाने से पहले उसमें से 5 छोटी आहुतियां या हिस्से निकाले जाते हैं।
कुछ भी, जैसे रोटी या चावल?
हाँ, कुछ भी, पकी हुई रोटी का एक छोटा टुकड़ा हो सकता है या चावल के कुछ दाने। इन हिस्सों को अग्नि को समर्पित किया जाता है और इसी छोटी सी क्रिया के बाद भोजन को प्रसाद माना जाता है।
प्रसाद, ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर इसका मतलब क्या सिर्फ मंदिर में मिलने वाला भोग है?
नहीं, प्रसाद का गहरा अर्थ है एक पवित्र भेंट या कृपा। जब हम भोजन का एक हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं तो जो बचा हुआ भोजन है वो सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह जाता,
वो खास बन जाता है।
हाँ, वो एक पवित्र अंश बन जाता है जिसे हम आभार के साथ ग्रहण करते हैं। ये खाने को एक मैकेनिकल काम से एक आध्यात्मिक अनुभव बना देता है।
और ये जो 5 आहुतियां हैं, ये किसी खास मकसद से दी जाती है ना? हमारे पास एक पोस्टर ही है जिसमें इन 5ों के लिए अलग अलग मंत्र हैं।
श्रोत कहते हैं कि ये हमारे 5 बड़े ऋणों का प्रतीक है।
जी हाँ, इन्हें सामूहिक रूप से 5 महायज्ञ कहा गया है। ये एक तरह का रोज का रिमाइंडर है। पहली आहुति है ब्रह्मयज्ञ।
ब्रह्मयज्ञ,
हाँ, ये ज्ञान और उस परम शक्ति के प्रति हमारा कर्तव्य है। मंत्र कहता है इदम ब्रह्मणे इदम न मम।
यह ब्रह्म के लिए है, मेरे लिए नहीं।
बिल्कुल, ये सिर्फ ईश्वर को थैंक यू कहना नहीं है, ये ज्ञान की उस पूरी परंपरा के प्रति आभार है जिसने हमें सोचने समझने की शक्ति दी, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक।
अच्छा, तो ये ज्ञान की विरासत का सम्मान है।
इसके बाद है देव यज्ञ। अब यहाँ देव से क्या मतलब है?
यहाँ देव का मतलब प्रकृति की वो शक्तियाँ हैं जो जीवन चला रही हैं।
हाँ,
सूर्य, वायु, जल, अग्नि।
अच्छा, नेचुरल फोर्सेस।
एग्जैक्टली, ये वो देव शक्तियां हैं जिनके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते। तो देव यज्ञ के जरिए हम कहते हैं इदम देभ्यः इदम नमोम, यह देवों के लिए है, मेरे लिए नहीं।
ये तो आज के समय में मतलब एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक आध्यात्मिक रूप हो गया।
आप ऐसा कह सकती हैं, हम प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं देख रहे,
उसे सम्मान दे रहे हैं।
और तीसरी आहुति ऋषि यज्ञ या पितृयज्ञ।
तीसरी है ऋषि यज्ञ या पितृयज्ञ?
ये हमारे पूर्वजों और उन सभी ऋषियों, विचारकों और वैज्ञानिकों के लिए है जिनकी वजह से हमें ये ज्ञान और संस्कृति विरासत में मिली है।
मतलब हम आज जो भी हैं वो उन्हीं की वजह से हैं।
हाँ, हम इतिहास के कंधों पर खड़े हैं, तो ये आहुति उन सभी ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है। भाव वही है, यह मेरे लिए नहीं है।
ये अपनी जड़ों को याद रखने जैसा है। ठीक है, चौथा है नृ यज्ञ। ये तो नाम से ही साफ है, मनुष्यों के लिए।
जी, नृ यज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ। ये पूरी मानवता और समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। अतिथि सत्कार इसका सबसे बड़ा प्रतीक है
कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए।
हाँ, पर इसका दायरा और भी बड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें समाज के उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिन्हें जरूरत है। इदम नरेभ्यः इदम नमम, ये सभी मनुष्यों के लिए है।
और फिर आखिरी पांचवीं आहुति जो मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करती है, भूत यज्ञ।
भूत यज्ञ, यहाँ भूत का मतलब प्रेत नहीं बल्कि सभी प्राणी हैं, ऑल बीइंग्स।
अच्छा,
ये पृथ्वी के दूसरे सभी जीवों के प्रति हमारा कर्तव्य है। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े।
पहली रोटी गाय को देना,
चींटियों को आटा डालना,
ये सब इसी का हिस्सा है।
ये सब इसी भूत यज्ञ के रूप है। ये हमें याद दिलाता है कि ये ग्रह सिर्फ इंसानों का नहीं है, और मंत्र का सार भी वही है, इदम भूतेभ्यः इदम नमम।
वाह, तो मतलब ये 2 मिनट का अनुष्ठान, ये एक तरह का मेंटल रीसेट बटन है। ये खाने से ठीक पहले हमें हमारी छोटी सी दुनिया से निकालकर एक बड़े ब्रह्मांडीय नक्शे पर हमारी जगह दिखाता है।
बिल्कुल सही, ये मैं और मेरा की भावना को रोज चुनौती देता है और इसे हम और हमारा में बदल देता है। ये चेतना का विस्तार करने का अभ्यास है।
ठीक है, ये सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रसम बनकर नहीं रह जाता? मतलब किसी ने चावल के 5 दाने अग्नि में डाले और हो गया कर्तव्य पूरा, फिर बाकी दिन अपने स्वार्थ में जिया?
बहुत जरूरी सवाल है ये।
क्या स्रोत इसे जीवन जीने के एक प्रैक्टिकल तरीके से भी जोड़ते हैं?
हाँ, और हमारे स्रोत इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वे कहते हैं कि ये अनुष्ठान तो सिर्फ एक बीज है, असली यज्ञ तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में होता है, हमारे व्यवहार में।
कैसे?
एक स्रोत इन 5 यज्ञों को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लिए 5-5 सिद्धांतों के समूह यानी पंचशील से जोड़ता है। ये आहुति उस पंचशील के लिए एक रोज का संकल्प है।
पंचशील, ये तो बहुत दिलचस्प है। जैसे पारिवारिक पंचशील, ये शायद पितृयज्ञ से जुड़ा होगा।
जी हाँ, पितृयज्ञ की आहुति हमें पारिवारिक पंचशील की याद दिलाती है, और इसका मतलब सिर्फ मृत पूर्वजों को याद करना नहीं है। इसका असली मतलब है आज अपने जीवित बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, छोटों का प्यार से पालन पोषण करना, परिवार में सद्भाव बनाए रखना। तो वो जो एक छोटी सी आहुति है वो असल में इन रोज के पारिवारिक कर्तव्यों का रिमाइंडर है।
ये तो अनुष्ठान को सीधे सीधे एक्शन में बदलने वाली बात हो गई। अच्छा, तो इसी तरह नृ यज्ञ से जुड़े सामाजिक पंचशील के बारे में क्या? अतिथि सत्कार तो ठीक है, पर आज की जिंदगी में,
हाँ, जहाँ हम अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते,
हाँ, तो पूरी मानवता के प्रति कर्तव्य का विचार थोड़ा बड़ा लगता है।
हाँ, शोट इस सब बहुत व्यवहारिक बनाते हैं। नृयज्ञ से जुड़ा है सामाजिक पंचशील। इसका मतलब है अपना काम ईमानदारी से करना, क्योंकि आपका काम समाज में योगदान देता है। एक जिम्मेदार नागरिक बनना, सबसे विनम्र व्यवहार करना, अपने वादे निभाना।
अच्छा,
यह विश्व बंधुत्व का सिर्फ नारा नहीं है बल्कि अपने रोज के व्यवहार में उसे जीना है।
और जो कनेक्शन मुझे सबसे चौंकाने वाला लगा वो है भूत यज्ञ का वैयक्तिक पंचशील से। मतलब सभी प्राणियों पर दया करने का हमारी सेहत और हमारी आदतों से क्या लेना देना है?
ये कनेक्शन बहुत गहरा है। श्रोत कहते हैं कि भूत यज्ञ का सार है करुणा, लेकिन सच्ची करुणा खुद से शुरू होती है। आप दुनिया की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका अपना सिस्टम, आपका मन और शरीर ठीक से काम ना कर रहा हो।
सही बात है,
इसलिए इसे वैयक्तिक पंचशील जुड़ता है। इसमें 5 सिद्धांत हैं: सात्विक आहार लेना, पर्याप्त पानी पीना, खुली हवा में सांस लेना, रोज मेहनत या व्यायाम करना, और अपने मन को शांत और खुश रखना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, ये आज के सेल्फ केयर के विचार जैसा ही है, लेकिन यहाँ इसे एक बड़े कर्तव्य का दर्जा दिया गया है। अगर आप खुद को स्वस्थ नहीं रखते तो आप ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए, और ना ही किसी और प्राणी के लिए पूरी तरह से उपयोगी हो सकते हैं। खुद को मजबूत बनाना भी एक तरह की सेवा है।
ये सचमुच कमाल है। कैसे खाने का एक छोटा सा टुकड़ा चढ़ाने की क्रिया को व्यक्ति, परिवार, समाज और पूरी प्रकृति के कल्याण से जोड़ा गया है। हमारे पास जो पोस्टर है उसमें भी लिखा है कि इसका लक्ष्य परिजनों में संस्कार जगाना और घर घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाना है।
हाँ, ये परंपरा को जीवंत बनाने का तरीका है। ये दिखाता है कि ये अनुष्ठान खोखले नहीं है, इनके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान और एक व्यवहारिक जीवन शैली है।
तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि बलि वैश्य यज्ञ सिर्फ भोजन से पहले दी जाने वाली 5 आहुतियों का एक सरल अनुष्ठान नहीं है,
ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे उन 5 बड़े ऋणों को रोज याद करने की एक प्रक्रिया है, ज्ञान के प्रति, प्रकृति के प्रति, हमारी विरासत के प्रति, समाज के प्रति और इस धरती के सभी जीवों के प्रति।
ये आभार और जिम्मेदारी का जीवन जीने का एक पूरा ढांचा है।
बिल्कुल,
एक स्रोत में से एक नए प्रबुद्ध युग का बीजारोपण कहा गया है। और खास बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बड़ी क्रांति से नहीं बल्कि हर घर की रसोई से होती है।
हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और ये हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वे कौन से छोटे दैनिक और सचेत अभ्यास हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो धार्मिक ही हों, जिन्हें अपनाकर हम कुछ भी उपभोग करने से पहले, चाहे वो भोजन हो या जानकारी, अपने आसपास की बड़ी दुनिया के साथ अपने जुड़ाव को याद रख सकें।